नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया लाइव फीड में आप सभी का स्वागत है। बी द चेंज सीरीज का नाम है और मैं हूं आपका दोस्त आर्टिस्ट एनपी। पिछले कई दिनों से हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। बदलते इस वक्त में अपने आप को बदलने की कोशिश हम में से हर कोई कर रहा है। इस बदलाव के साथ हम भी आपके साथ हैं, ये कराने की, एहसास दिलाने की एक छोटी सी कोशिश है। और जब हमें ये एहसास होता है कि हम ही नहीं हैं, साथ में और भी हैं, तो सफर आसान सा नजर आता है। और इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ एक और मास्टर ऑफ मेडिटेशन, हमारे एक स्पिरिचुअल मास्टर को लेकर हम आए। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से ये ब्रह्मा कुमारीज की सोशल मीडिया टीम की विशेष पेशकश है, जहां पर हम सीधे आपसे जुड़ रहे हैं और आपके सवालों को, आपके भावनाओं को और अगर आपके फीडबैक्स हैं तो उन सब चीजों को हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलाव के सफर में अगर आपको मदद की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की या फिर किसी भी प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता है, तो जितना हो सकता है उतना सपोर्ट, उतना प्रयास हम कर रहे हैं कि हम आपको मदद कर सकें। आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन भी ऐसी ही छोटी सी कोशिश आप सभी के लिए करेंगे और आपके प्रश्नों को उत्तर के रूप में और समाधान के रूप में देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के नैरोबी केन्या से सिस्टर प्रतिभा हैं। प्रतिभा दीदी पिछले कई दशकों से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हैं और ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को देश विदेश में, भारत ही नहीं, अफ्रीका ही नहीं, मगर दुनिया के अनेकों देशों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लाखों लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है और लोगों का मार्गदर्शन किया है। दीदी वेलकम टू द शो।
थैंक यू, ओम शांति, आप सबको वेलकम।
दीदी जैसे कि हम देख रहे हैं तो पूरे दुनिया में एक साथ एक ऐसा सिचुएशन आया है जहां पर हम सभी लोग एक ही चीज को डील कर रहे हैं। शायद ही दुनिया में ऐसा कभी हुआ हो जहां पर सारी दुनिया एक ही प्रॉब्लम को एक साथ डील कर रही हो और उसके इम्पैक्ट से गुजर रही हो। ऐसे समय पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। एक पैनिक वाला सिचुएशन तो कुछ लोगों के अंदर पहले था, बट शुरुआत में धीरे धीरे वो कम होता आया है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको अभी इस चीज को फेस टू फेस करने का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन खुला तो कुछ लोग अलग तरीके के पैनिक से गुजर रहे हैं। तो ये जो पैनिक होना है, ये स्वाभाविक है या हमें पैनिक नहीं होना चाहिए या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कैसे हम इस चीज को अप्रोच करें?
अच्छा, पहले तो मैं ये कहूंगी कि ऐसी सिचुएशन हमारी हिस्ट्री में कभी आई नहीं है। मैं तो मानती हूं ये पहली ही बार आया है। देश देश का होता है, कॉन्टिनेंट का होता है, गांव का होता है, लेकिन सारे विश्व का एक साथ होना वो इम्पॉसिबल है, लेकिन हो गया। और पूरी ही दुनिया एक ही भाषा बोल रही है, लॉकडाउन बोल रही है, क्वारंटीन बोल रही है, कोविड बोल रही है, कोरोना बोल रही है। तो मतलब कि एक तरफ आप देखो ना तो सारा वर्ल्ड जैसे छोटा सा ग्लोबल विलेज बन गया है। तो बेहद से हद, या तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत क्लोज आ गए हैं। दूसरा कि पैनिक होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसमें हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने, मैं मेडिकल पर्सन तो नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर्स भी बोलते हैं जब आपकी बॉडी में कुछ रॉन्ग होता है तो आपको पेन होता है या कुछ ना कुछ एक सिग्नल आता है। तो वो खराब चीज नहीं है सिग्नल आना, एक रियलाइजेशन आता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा, उसका क्योर मिलेगा। तो ये भी एक मैसेज ही है, पूरे दुनिया को, विश्व को एक कुदरत मैसेज दे रहा है। तो उसमें पैनिक होना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैनिक के साथ साथ हम उसका सोल्यूशन भी निकालें। तो सोल्यूशन निकालने में हम फोकस करें, पैनिक में फोकस नहीं करें।
बहुत अच्छी बात है, ये कह देने से ही बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलता है कि हाँ हम ठीक है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत बार हम अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं, इज दिस समथिंग रॉन्ग विथ मी, इज समथिंग गोइंग ऑन विथ मी, ये चीज होने लगता है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। तो व्हाट यू सेड मेक्स सेंस कि इट्स ऑल राइट टू पैनिक बिकॉज इट इज अ सडन थिंग, अ सडन चेंज हमारे साथ हुआ है, बट उसी पैनिक में जीना नहीं है, उसके बारे में हमें सॉल्यूशंस के बारे में, उससे हम कैसे बाहर निकले उसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और अलग अलग जगह पर इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। अगर आप सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, अगर कोई बात है जो आप सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, इफ इट इज जस्ट समथिंग दैट यू वांट टू गिव अ शाउट आउट, समथिंग दैट यू वांट टू शेयर और जस्ट से समथिंग, यू कैन ऑलवेज डू दैट। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं और यहाँ पर हम उन चीजों को शेयर करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो आने शुरू हुए हैं, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। प्रीति अग्रवाल जी का प्रश्न है, प्रीति फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रीति का प्रश्न है, दिमाग को शांत और पॉजिटिव थॉट्स से कैसे भरा जाए, कैसे खुद के अंदर नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव थॉट्स को दूर किया जा सकता है, ये सवाल पूछते हैं।
अच्छा प्रीति, बहुत सुंदर प्रश्न है और मैं तो समझती हूँ कि अभी सारी दुनिया ही ये हालत से पास हो रही है, तो मैं आपको एक मेटाफोर दूंगी। मेटाफोर ये है कि एक बहुत नैरो गंदी बॉटल है और उसमें इतना गंद भरा हुआ है लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, फुल फोर्स से उसमें पानी डालते हो और इतना पानी डालो, इतना फोर्स फोर्स से पानी डालो कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि पानी भी गंदा हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन आप वो गंदे पानी को निकलने देते हैं और फिर ऐसा स्टेज आएगा कि बॉटल भी क्लीन हो जाएगी और पानी भी क्लीन हो जाएगा, तो आप वहां तक पहुंच सके और आपने साफ कर दिया। तो ये मेटाफोर हमें हमारी लाइफ में यूज करना है। तो उसमें क्या होता है कि कितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर हो, नेचुरली इतना तो आप मेरे साथ अग्री करेंगे प्रीति जी कि हमारी नेगेटिविटी माइंड से शुरू होती है।
मैं सोचता हूँ प्रतिभा रेति जी के इंटरनेट कनेक्शन में जहां से हम लाइव फीड ले रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। खैर मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ, मैं दीदी के वापस आने का इंतजार करता हूँ और हमारा टेक्निकल टीम इस पर काम कर रहा है। जैसे कि दीदी बता रहे थे, हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को डील कर रहे हैं और पैनिक के बारे में वो चीज जो कह रहे थे वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, बट एक नेचुरल फिनोमेनन है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं तो फिजिकली हम ये चीजें देखते हैं कि हमारे अंदर ये चीजें होने लगती हैं जिन चीजों को हम बदलने की कोशिश करते हैं और ये ट्रिगर्स हैं, ये हमें बताते हैं कि हाँ चलो जो कुछ हो रहा है वो कुछ सही नहीं है, देयर इज समथिंग डिफरेंट हैपनिंग टू यू एंड आपको अपना रिस्पॉन्स भी बदलने की जरूरत है। पिछले कई दिनों से यही कोशिश रही है, लगभग पिछले 20-22 दिनों से हम आपके साथ जुड़े हैं और हर दिन हमारे एक नए स्पिरिचुअल मास्टर आपके साथ जुड़ते हैं और वो मास्टर ऑफ मेडिटेशन होने के कारण वो अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें और इस बदलते हुए वक्त में अपने आप को कैसे गियर अप करें। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, बट मुश्किलें हैं तो उसमें घबराने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए और मैं पिछले कई दिनों से जो बातें सुन रहा हूं उससे मुझे बहुत पर्सनली फायदा हुआ है। एक बात जो बार बार उभर कर आई है, बार बार बहुत सारे कॉन्वर्जेशन से निकल कर आई है, वो ये है कि मदद मांगने से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों ने ऐसी मदद मांगी भी और उस मदद को हमने रीच आउट करने की कोशिश की। कुछ दोस्तों ने यह भी फीडबैक दिया कि हमें और ज्यादा मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन सिखाने के लिए हमें कुछ आप व्यवस्थाएं दें, तो पिछले कुछ दिनों से हमने ये कोशिश की है कि हमारे फेसबुक पेज पर यानी facebook.com/brahmakumaris पर और youtube.com/brahmakumaris पर यानी ब्रह्माकुमारीज के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर हम हर दिन शाम को 5:30 बजे भारत के समय अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 PM को 15 मिनट्स का ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन प्रोग्राम करा रहे हैं। ये सभी के लिए है, सभी लोग फ्री ऑफ चार्ज कर सकते हैं और आप अपने घर में या कहां पर भी बैठे हैं ऑफिस में, जिधर भी आप जाना आना कर रहे हैं तो आप ये 15 मिनट्स के लिए ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कर भी सकते हैं। तो हम सभी लोग कलेक्टिवली मिलकर हर दिन शाम को 5:30 बजे फेसबुक पर और यूट्यूब पर कलेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रतिभा दीदी हमारे साथ वापस हैं। दीदी प्लीज कंटिन्यू कीजिए।
अच्छा, तो मैं देखो प्रीति, आपने देखा ना एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पल कि कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है, पैनिक करने के बदले मैं उसको सोल्यूशन निकालूं। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारी लाइफ में भी जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे माइंड में से शुरू होता है, थॉट्स हमारे ऐसे हैं, तो हमें क्या करना है कि वो गंदी बॉटल को साफ करने के लिए फुल फोर्स में उसमें ऐसे ऐसे थॉट्स डालने हैं जो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सके। तो या तो हमें संग ऐसा लेना है, या तो ऐसी बातें पढ़नी है, या ऐसी बातें सुननी है। कॉन्स्टेंटली आप सुनते जाओ, कितनी भी नेगेटिविटी आप वरी नहीं करो, उस पर देखो भी नहीं, खाली अच्छी अच्छी बातें आपके माइंड में फीड करते जाओ। आपको ऐसा भी लगेगा आ गई है, लेकिन बात ऐसा नहीं है, वो क्लीन हो रहा है और एक स्टेज आएगी जिसमें आप देखना इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी और एनर्जी भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये मेटाफोर मैं यूज करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक रूम अंधेरा हो जाता है तो हम डार्कनेस के साथ फाइट नहीं करते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं? लाइट करते हैं। इसी प्रकार से हमें कोई भी चीज से फाइट नहीं करना है, नेगेटिविटी के साथ भी आप फाइट नहीं करो, स्ट्रगल नहीं करो, लेकिन क्या करो, उस तरफ देखो भी नहीं। रियलाइज कर लिया ना कि नेगेटिविटी है, बस वहां फुल स्टॉप लगा दो। और आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गीत, जो भी फैसिलिटी है, तो उससे एक बार हमारा माइंड क्लीन हो जाएगा और उसके बाद पॉजिटिविटी क्रिएट करना वो हमारे हाथ में है।
बहुत अच्छी बात है दीदी, आपने कही कि ये जो चीज बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई ये क्या करें अभी। बट ये चीज है कि अगर हम साफ पानी डालने भी लगते हैं तो शुरुआत में थोड़े दिन वो पानी भी गंदा नजर आने लगता है, वो पॉजिटिव चीजें भी हमारे साथ ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रही, बट ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे काम करती है, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ, अर्चना चौधरी हैं, अर्चना जी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं। अर्चना जी का सवाल है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकल और क्लियर करें, प्रैक्टिकली हमें समझाएं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और ईगो क्या है। बहुत बार हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हाँ ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट दूसरों को वो हर्ट करने लगता है, तब पता चलता है वो ये तो ईगो था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली यूज करें और अप्लाई करें?
अच्छा अर्चना, ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग वो थोड़ा पॉज करके वो डिफरेंस देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखना नहीं चाहता है, दे कैरी ऑन एंड ऑन। जो आपको ये विचार आया तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, नम्रता है। जितना जितना मैं नम्र हूं, ह्यूमिलिटी है मेरे में, तो मुझे रियलाइज होगा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये ईगो है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भले हमारे में ईगो भी हो, लेकिन बीच बीच में मुझे पॉज करके देखना है कि वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। मैं जो बोल रही हूं, मेरी जो एटीट्यूड क्रिएट कर रही है, मैं कुछ शेयर कर रही हूं, इज इट कमिंग फ्रॉम द ईगो साइड और द सेल्फ रिस्पेक्ट साइड? अभी सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या है, हैवीनेस नहीं होगा, ईगो में हैवीनेस होगा। यू विल हैव टू होल्ड योर सेल्फ बिकॉज आपका ईगो आपको वो कर रहा है, पुश कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत नेचुरल होगे और बहुत लाइट होगे, क्योंकि वो मेरा सही स्वरूप है और सही स्वभाव है। हा? कि हम ह्यूमन और बीइंग दो चीज है, जो ह्यूमन को अपनी रीति से किसी को इम्प्रेस करना है तो आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ दैट वे, जिसमें हैवीनेस आ जाती है और कुछ भी करती हूँ आत्मा के रूप से करती हूँ, तो मुझे अपने आप को होल्ड नहीं करना पड़ता है, मैं फ्लाई कर सकती हूँ, मैं हल्की रह सकती हूँ और नेचुरल रह सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नेचुरली आज दुनिया में जो भी हो रहा है वो ईगो के तरफ से हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट खाली स्पिरिचुअल पीपल में है और ईगो स्पिरिचुअल पीपल में नहीं है, जरूरी नहीं है। ये मैं आपको फ्रैंक बताऊंगी। हमारे पास एक नैरोबी में बहुत पढ़ा लिखा और बहुत नामी ग्रामी प्रोफेसर आते थे, लोकल थे, प्रोफेसर थॉमस ओडियांबो, अभी तो लेट है, लेकिन वो आत्मा मैं समझती हूँ जन्म से ही बहुत नम्र है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं उनको जब देखती थी ना तो मुझे अंदर से लगता था कि उनके अंदर से एक अमी सी टपक रही है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की और नम्रता की। तो ह्यूमिलिटी नम्रता से जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो वो मुझे एक दिन सुना रहे थे, क्योंकि वो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक साइंटिस्ट इन द कॉन्टिनेंट, तो उनको जब एप्लीकेशन करना था यूके में यूनिवर्सिटी में, तो उनकी स्किन के कारण उनको जगह नहीं मिली ऑक्सफर्ड में, कैम्ब्रिज में। तो ही हैड टू बी सो हम्बल एंड ही टोल्ड मी, सिस्टर प्रतिभा, आई कुड नॉट गो टू अ व्हाइट कंट्री बिकॉज आई एम ब्लैक, तो आई जस्ट हैड टू कॉम्प्रोमाइज। और मैंने यहाँ युगांडा की मकरेरे यूनिवर्सिटी, जो अफ्रीका की नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां मैंने जगह ली। मेरी कैपेबिलिटी काफी उससे अच्छी थी, लेकिन फिर भी तो आई कुड फील द यू नो ह्यूमिलिटी बट सेल्फ रिस्पेक्ट। ह्यूमिलिटी डजंट मीन के यू हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने मेरे को जब सुनाया ना, तो मेरे हाथ को इतना टच हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो प्रोफेसर मुझे मिला मकरेरे यूनिवर्सिटी में, वो ब्रिटिश था और वाइट था, और मैं एक ही स्टूडेंट था उसके क्लास में, ओनली वन स्टूडेंट, क्योंकि अफ्रीका में किसी ने ये हिम्मत की ही नहीं कि वो साइंटिस्ट बने। और बोलता है कि मैं इतना मतलब उसके क्लोज आ गया, तो उसने कहा तुमको क्यों ऑक्सफर्ड में जगह नहीं मिलेगी, तुमको जरूर मिलेगी, मैं करूंगा कुछ। और डेफिनेटली ये प्रोफेसर ने उनको ऑक्सफर्ड में भेजा, और ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट to be graduated from Oxford University in the UK. Abhi, do baat yahan par aap dekho, self-respect hai na, to jab bhi life mein opportunity ka door khula hai, le lo, grab it, par nahi karega. Wo kahega, pehle mujhe kyun na bhi karuga. To ego ka ye hai, अपॉर्चुनिटीज लूज कर लेते हैं, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है, दे विल टेक द अर्लीएस्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू नो दे वुड लिटरली ग्रैब इट, आई वुड से। तो आज वो साइंटिस्ट थे, मतलब ही इज लेट नाउ, और बाबा के बच्चे भी बहुत पक्के थे, लेकिन नेचुरल लोगों में भी ये गिफ्ट होती है, मैं ऐसे मानती हूँ, से मिलती है दो बात, लेकिन हम डेवलप कर सकते हैं डेफिनेटली। अर्चना जी, आपको आंसर मिला होगा?
बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ उनको आंसर भी मिला होगा, और ये भी बहुत अच्छी बात कही, जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो, या जरूरी नहीं आपके पास एक स्पिरिचुअल रेंट ऑफ माइंड हो, अदरवाइज भी आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये उदाहरण जो आपने दिया, जो ये सबसे पहले ब्लैक साइंटिस्ट थे जो ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके, बहुत ही नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज में जा पाए, और उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए। अगले सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। फेसबुक से ही अगला सवाल है, फेसबुक से हमारे साथ सिया मोटवानी है। सिया का सवाल है, ओम शांति दीदी, दीदी चेंज इन वन सेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मीन वाइल we feel loss of patience and panic too. What has to be done in such a situation? For example, I decided not to get angry, but when I fail in that, I feel panicked post situation because of the karma theory. मैं इस सवाल को पूछ लेना चाहता हूँ। सिया का ये सवाल है कि बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं, बट बदलाव के उस दौर के दौरान जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, जब हम सक्सीड नहीं कर पाते या एक आध मिसस्टेप हो जाता है, तो उस टाइम पे हम पैनिक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि मैं गुस्सा तो नहीं करना चाहती, बट अगर गुस्सा नहीं करते करते किसी दिन एक आध बार गुस्सा कर लिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट मेरे पे आता है। मैं खुद ही ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। सिमिलर सा एक क्वेश्चन है जो श्रुति का है। श्रुति सवाल पूछते हैं, माय पॉजिटिविटी एंड रेगुलर मेडिटेशन हेल्प्स मी ट्रेमेंडसली, बट समटाइम्स सम सिचुएशंस आर सो हार्ड फॉर मी टू ओवरकम एंड देन माय एंगर रिएक्शन एटसेट्रा विल कम इन माय एक्शंस एंड माय एफर्ट्स वॉश अवे। प्लीज हेल्प मी हाउ टू एम्पावर माय सेल्फ रेगुलरली and keep myself very strong that I do not get affected by these situations. मैं regular meditation करती हूँ, positivity practice करती हूँ, उसकी वजह से tremendous help मिला है, but समय समय पर जब practice करते करते एक आध बार भी जब हमारा practice टूटता है या हमें गुस्सा आ जाता है या फिर कुछ और negative emotions आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जो कुछ हमने किया है उस पर पानी गिर गया ऐसा लगने लगता है। तो ऐसे टाइम पे हम अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे करें, कैसे इन चीजों से हताश ना हो, निराश ना हो, खुश रहें।
अच्छा, सिया और अर्चना ने
श्रुति
सेकंड वन। अच्छा कोई नहीं, हाँ श्रुति हाँ सॉरी श्रुति हाँ। तो दोनों के क्वेश्चंस बहुत सिमिलर है, दे बीन पुट इन अ डिफरेंट वे, पर मेरे को दो आंसर्स इसमें देने हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि माई सेल्फ, तो जब माई सेल्फ कहते हैं ना तो अपने आप को अकेला समझते हैं, और अकेला समझते तो हमारी जितनी लिमिट है ना उतना ही हम कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन यहां पर श्रुति ने जवाब दे भी दिया कि मुझे मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिलता है, तो डेफिनेटली द मोमेंट आई कनेक्ट टू द सुप्रीम को हम ओशन भी कह सकते हैं, ट्रेजर स्टोर भी कह सकते हैं, पावर हाउस भी कह सकते हैं। तो जैसे आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने लगी तो डेफिनेटली आप सीधा उसको कनेक्ट करेंगे। आपके घर का पावर कट हो गया है तो डेफिनेटली आप अटेंशन दे करके उसको जो जहां से पावर आता है वहां कनेक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी स्टेजेस है, तो हमें सबसे पहले ये नहीं समझता है मैं अकेली हूं, माई सेल्फ मतलब मैं अकेली हो जाती हूं तो मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूं क्या नहीं। लेकिन मैं जब सुप्रीम के साथ कनेक्ट होती हूं, पावर हाउस के साथ कनेक्ट होती हूं, ट्रेजर स्टोर के साथ कनेक्ट होती हूं तो वहां से मुझे जो भी चाहिए वो मिल सकता है। तो रिचार्ज जैसे कहते हैं, तो कॉन्स्टेंट रिचार्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही मैं अपने आप को एंगर से रिप्लेस करके पेशेंस कहो पीस कहो लव कहो जो भी सप्लीमेंट है वो मैं यूज कर सकती हूं तो मुझे एंगर यूज नहीं करना पड़ता है। तो एक तो ये बात है कि रिप्लेसमेंट मुझे चाहिए एंगर की जगह, मुझे क्या यूज करना है तो मुझे लव यूज करना है, मुझे पेशेंस यूज करना है, धैर्यता यूज करनी है, तो वो मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे में लिमिटेड है। कई बार हमने चार्ज भी नहीं किया है तो चार्ज करना है, तो वो परमात्मा कहो बाबा कहो पावर हाउस कहो वहां से मैं चार्ज करके उसको यूज कर सकती हूं, तो मैं अकेली नहीं हूं। दूसरा कि मैं ये स्पिरिचुअल पाथ में 6 इयर्स से हूं, हम भी 100% नहीं है ऑनेस्ट। कई बार हमने सोचा मैं मेरा पेशेंस नहीं गुमाऊंगी और मैं गवा देती हूं। कई बार थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, चलो गुस्सा न भी आता हो लेकिन चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो कभी अपने आप को 100% एक्सपेक्ट नहीं करो। जब आप कहते हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है तो आप काउंट करो कि मैंने थॉट किया था कि मुझे गुस्सा नहीं करना है और अभी कितने दिन के बाद आया। चलो एक एग्जांपल दूं कि दिन में आपको 4-5 बार गुस्सा आ जाता है, बच्चों पे, हस्बैंड पे, वाइफ पे, जो भी हो, आपके कॉलिग से, तो 4-5 बार आया ना, फिर आप अपने आप से बहुत दृढ़ निश्चय करते हो कि अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है ये नुकसानी मेरे को ही मिलती है और किसी को नहीं। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, फिर भी आ गया, तो ये नहीं देखो कि मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन देखो कितनी बार आया। तो दिन में चार पांच बार की जगह मुझे एक ही बार आया ना, अपने आप को पैट करो, थैंक यू, बहुत अच्छा। दिन में एक बार नहीं, दो चार दिन के बाद एक बार आ गया, फिर महीने में एक बार आ गया, तो ऐसे करते करते when you will get better and better, you will achieve what you want. लेकिन जब हम expect करते हैं कि एक ही दिन में मेरे में change आ जावे, तो आप अपने आप को disheartened करते हो। ये चीज करने में हमें encouragement चाहिए, discouragement नहीं चाहिए, और अपने आप को ही हम डिस्करेज कर देते हैं। अपने आप को constantly encourage करते रहो, तो आप देखना आपका गुस्सा क्या आएगा भी नहीं आपके नजदीक, वो मेरा अनुभव है।
बहुत ही अच्छा एडवाइस है, मेरे एक दोस्त भी हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, वो जी विशाल शाह नाम है इनका, और वो कहते हैं बहुत ही अच्छा एडवाइस है,
वेरी ट्रू एडवाइस
जी। ऐसे ही कहते हैं अर्चना दुबे भी, धन्यवाद कहते हैं, कहते हैं वेरी ट्रू, ऐसे बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं। जो आप बात ये कह रहे थे मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इसलिए क्योंकि बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, मगर हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। जो आपने कही अपने आप को पैट करने की बात कही, जब भी हम अच्छा करते हैं तो अपने आप को पैट भी करना सीखें, जब गलती होती है तो अपने आप को कोसने में ज्यादा चले जाते हैं, हम शायद उसे चेंज करने की जरूरत है। और अगर ये देख लिया जाए कि चलो कोई बात नहीं, अगर 10 बार गुस्सा आया है तो 11वें बार वो नहीं आए और धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, तो लोगों को अच्छा लगता है। रजनी कपूर थैंक यू कहते हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त फीडबैक भी दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ, डॉक्टर सीमा पूछ रहे हैं, डॉक्टर सीमा बसु मंगलकारे। डॉक्टर सीमा फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एंड डॉक्टर सीमा का सवाल है हाउ टू बी काम इन क्रिटिकल सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, बहुत सारे लोग क्वारंटीन में हैं, बहुत सारे लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, कुछ लोग क्लिनिकल क्वारंटीन में हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे लोग पे हैं, तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में लोग अपने आप को काम कैसे रखें।
जी तो डॉक्टर सीमा जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खाली आपके लिए नहीं है, समझती हूँ आप तो हॉस्पिटल में हो गए इसलिए आपके लिए तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए क्रिटिकल है, हर एक व्यक्ति के लिए। और मैं क्या कहती हूँ कि मैंने एक मैसेज पढ़ा था, हमारे माउंट आबू से ही आया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि दुनिया में जब बादल छा जाते हैं, एक्सट्रीम हैवी बादल, तो क्या कर देता है, अंधेरा कर देता है, बहुत अंधेरा सा अंधेरा। अभी आप देखो ना नैरोबी, तो कोई समझता है कि नैरोबी में तो फैंस और एयर कंडीशन और सब होगा, लेकिन यहाँ की वेदर ऐसी है कि अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन वो बादल खुल जाएगा तो या तो वो पहले बहुत हैवी रूप से बरसेगा और वर्षा होगी, उसके बाद हरा भरा कर देगा और फिर वो बादल चला जाएगा और लाइट आ जाएगी। तो समझो अभी जो ये कोरोना वायरस है, बीमारी है, सिचुएशन है, वो एक बहुत बड़ा विश्व भर में बादल छाया हुआ है और अंधेरा कर दिया है, ह्यूमन बींग्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, कैसे लाइफ को समझे। तो उसमें बादल हमेशा नहीं रहने वाला, ना जल्दी आया उतना ही जल्दी वापस चला जाएगा, लेकिन जाने के पहले वो वर्षा करेगा, हैवी वर्षा करेगा। और क्या बरसेगा? तो सबसे पहले हेल्थ बरसेगी, क्योंकि अभी इतने लोग अलर्ट है जो हम लोग अलर्ट नहीं थे, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बना रहे थे, हम ध्यान नहीं रख रहे थे, हाइजीन नहीं फॉलो कर रहे थे। अभी आप देखो कितना हम अलर्ट है। तो सबसे पहले तो हेल्थ की वर्षा होगी विश्व भर में। आप देखना इतने सब हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। दूसरा कि मॉनिटरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि पैसे इनकम ही नहीं है, पेड लीव की कितनी मिलेगी, तो लोगों को बहुत डर लग रहा है ताकि उसकी भी वर्षा होगी। कहां से आएगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, वो आप देखना जो भी हो, वो डिटेल में मुझे जाना नहीं है। और तीसरा रिलेशनशिप, अभी थोड़े समय से मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन बीइंग और रिलेशनशिप की वैल्यू कम है। और ये सब जो है ना गैजेट्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो तो अच्छी बातों के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जब कोई आपके घर में जाके बैठने आवे सोशली, तो आपका टेलीविजन चैनल चल रहा है, आपका सोप ओपरा चल रहा है, तो कोई एक दूसरे को देखता भी नहीं है। आपको भी वहां जाके बैठ करके वो ही देखना है, क्योंकि वो सीरीज चल जाएगी। रिलेशनशिप की वैल्यू बहुत हो गई थी। ऑनेस्टली आपके घर में मदर फादर बच्चे हैं, आप फोन करेंगे कहेंगे आपके बेटे को बुलाओ, कहेंगे पता नहीं वो घर में है या नहीं, मैं देखूं। घर में और घर में एक छत के नीचे पता नहीं है फादर को, बच्चे को, माँ को, हस्बैंड को, वाइफ को कि वो है या नहीं, लेकिन हजारों माइल दूर हम कोई फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वो हमें पता है। तो आप विचार करो कि ह्यूमन इमोशंस का हो, सेंटीमेंट्स का हो, वैल्यू का हो, रिलेशनशिप का हो, वो अभी ही ये लॉकडाउन में हमें वैल्यू हो रहा है, क्योंकि एक ही छत में आपस में सबके साथ रहना है। मैं तो मेरा ही एग्जाम्पल दूंगी, हम 10 बहनें नैरोबी सेंटर में है ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में, लेकिन मैं हमेशा ट्रेवल करती हूं, एक बैग खाली और एक बैग, सबको आदत सी पड़ गई थी मुझे पूछने की कि पासपोर्ट देखा भी नहीं है। तो आपस में हम इतनी अच्छी तरह से रह रहे हैं जो सालों तक हम ऐसे रहे नहीं है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, देखना, एक्नॉलेज करना, भले आप बातें नहीं करो लेकिन प्रेजेंस से वो तो हम समझे। तो इस प्रकार से तीसरी वर्षा मैंने देखी रिलेशनशिप की, एकदम होगी, आप देखना वैल्यू हो जाएगा ह्यूमन रिलेशनशिप और कंपनी का। तो ये बादल आया है और चला जाएगा, लेकिन उसकी अदर साइड को हम देखें तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और मैं समझती हूँ ये बीमारियां और स्टॉर्म है, तो जैसे एक दीपक होता है ना, जब स्टॉर्म जोर से आता है ना वो दीपक थोड़ा झुक जाता है, हमको लगता है वो बुझ गया है, लेकिन बहुत क्लेवर होता है, बुझा तो नहीं है खाली झुक गया है, और वो स्टॉर्म चला गया, ऊपर आ गया और अच्छी तरह से लाइट देने लगा। तो हमारी लाइफ भी दीपक की तरह ही है। अभी जो स्टॉर्म आया है, जो हमें स्ट्रेस कर रहा है, उस समय में इंट्रोवर्ट हो जाओ। इंट्रोवर्ट मतलब हम झुक जाते हैं, और इंट्रोवर्ट मतलब साइलेंस में चले जाओ, बहुत सोचो नहीं, जो करना है निमित्त मात्र आप करो, और फिर आप देखना वो स्टॉर्म चला जाएगा तो आपकी ब्राइटनेस ऊपर तक आ जाएगी, मतलब स्ट्रेस चला जाएगा और खुशी खुशी का अनुभव होगा। तो दो बातें मैंने आपको बताई, उस खास मैंने ये बताया बहुत सोचू लेकिन कर्म करती जाऊं। डॉक्टर सीमा कैसा लगा आपको?
मैं समझता हूँ उनको सेटिस्फाइड हुआ होगा प्रतिभा, थैंक यू सो मच। और जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे क्लाउड्स के बारे में, ये एग्जांपल दे रहे थे कि क्लाउड्स के बाद बारिश आती है और बारिश के बाद ग्रीनरी भी आती है, ऐसा एक हमारे दर्शक ने लिखा है. एंड एज वी आर स्पीकिंग अबाउट इट, और यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, हमारे यहाँ पहले बादल थे, अब बारिश शुरू हो गई है. तो इट्स वेरी एप्ट दैट यू यूज्ड इट राइटफुली. और बहुत सारे हमारे दोस्त ने इस एग्जाम्पल को अप्रिशिएट किया. इट इज अ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग एंड पावरफुल एग्जाम्पल ऑन हाउ टू बी इंट्रोवर्ट इन टाइफून्स एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऐसा गैरी पंजाबी लिखते हैं. बहुत सारे दोस्तों ने भी इस चीज के लिए फीडबैक लिखा है. प्रभा सिंह कहते हैं थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही यूजफुल एडवाइस है आपको, ओम शांति कहते हैं. मिलिंद सर्देश पांडे कहते हैं ओम शांति दीदी जी, वेरी नाइस एपिसोड कहते हैं. यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं मिलिंद, थैंक यू सो मच अप्रिसिएशन के लिए, एंड थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े हैं. रेणुका मेहता कहते हैं वेरी नाइसली एक्सप्रेसिंग, आप जैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है. चंदन शर्मा कहते हैं दीदी एकदम ठीक, थैंक यू चंदन. सपना प्रसाद जी कहते हैं वेरी पॉजिटिव थॉट्स, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सपना. अगले सवाल की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ. जैसे आप ये एग्जाम्पल दे रहे थे बारिश के बारे में, अक्सर हम इंग्लिश में कहते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. ये सिल्वर लाइनिंग तो छोटा होता है, बट आपने पूरे पूरे डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि अगर क्लाउड है तो उसके बाद बारिश होने वाली है और अच्छी चीजों की बारिश होती है. तो एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है. अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ. हमारे एक और दोस्त पूछते हैं कि बहुत बार ये कहा जाता है कि जब भी कोई स्टॉर्म है, कोई तूफान होता है, तो ये कहा जाता है कि तूफान का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही पीसफुल होता है. इसलिए कहते हैं द आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है. अगर आप वहां हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है. बट बहुत बार हम लोग पेरिफेरी में ऊपर बाहर की चीजों के ऊपर ही रह जाते हैं, तो हमें लगता है ये तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है. बट कैसे हम उसके गहराई को समझे, क्योंकि सिर्फ वो तबाही ही नजर आ रही होती है, वो स्टॉर्म जो डैमेज कर रहा होता है वही हमें नजर आ रहा होता है. ये एक सवाल है जो मैं लेना चाहता हूँ.
अच्छा, क्या है कि जो मैंने अगले प्रश्न में जवाब दिया ना इंट्रोवर्ट का, तो हर एक चीज का बैलेंस चाहिए. तो देखो, तूफान भी जो है, स्टॉर्म भी जो है, उसका भी बैलेंस है. अंदर में आई ऑफ द स्टॉर्म बहुत काम है और बाहर एक्सट्रीम अपहीवल है, तो दोनों का बैलेंस हो गया तो ही तो वो काम चलता है. तो इसी प्रकार से हमें कोई भी सिचुएशन में अंदर साइलेंस और कामनेस है और बाहर एक्शन और साउंड है. लेकिन आप थोड़े ही दिन पहले, थोड़े महीने कहो, अभी तो दिन नहीं है, ये कोविड को तो 3 मास हो गए मैं समझती हूँ, 3-4 मास, तो उससे ही पहले आप दुनिया की, समाज की सिचुएशन को थोड़ा देखो कि बाहर भी तूफान और अंदर भी तूफान, तो दोनों का बैलेंस नहीं हुआ. बाहर भी हम बोलते रहते हैं और अंदर भी सख्त सोचते रहते हैं, तो वी आर नेवर देयर. तो हमारे में बैलेंस नहीं था. और मैं ये स्टेट 100% नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई कोई आपको बताऊं कि कितने मास हुए, 3 मास हुए, राइट, हम लॉकडाउन में गए. तो 3 मास ह्यूमन बीइंग को बहुत भारी लग रहा है, और इतनी पूरी जिंदगी 30 इयर्स आपने इतना मौज मस्ती की तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ा. मतलब आप फ्री थे ना, फ्री बर्ड थे, 30 इयर्स, 40 इयर्स, 20 इयर्स आप फ्री बर्ड थे. वो टाइम बहुत जल्दी जल्दी पास हो गया, और ये 3 मास आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन नहीं, दोनों का बैलेंस है. जैसे एक टोर्टोइस होता है ना, टोर्टोइस क्या करता है उसको पता है, उसके अंग बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है, नाजुक है. तो वो उसको कुदरत ने कितना अच्छा शेल दिया है, और वो अपना कर्म करता है, बाहर निकलता है, खाता है, मूव होता है, और फिर अंदर चला जाता है अपने हार्ड शेल में. तो इसी प्रकार से हम ह्यूमन बींग्स को वो टीच कर रहा है, ये सिचुएशन भी हमें टीच कर रही है कि आप बाहर मुक्ता में भी जाओ, आप एक्सट्रोवर्ट भी हो, आप बोलो, एक्शन में जाओ, सब कुछ करो, लेकिन इंटरवल ये से पहले मतलब ये 3 मास आने से पहले हमने 2 साल का अफ्रीका में प्रोग्राम किया पॉज फॉर पीस. पॉज फॉर पीस मतलब हम आपको नहीं कहेंगे कि आप 1-1 घंटा मेडिटेशन में बैठो, ये नहीं कहेंगे, लेकिन खाली फ्यू सेकंड्स के लिए आप अंदर चले जाओ, पॉज हो जाओ और फिर बाहर निकल करके जो करना है करो, सोचना है सोचो, बोलना है बोलो, खाना है खाओ, जो करना है करो. तो इसी प्रकार से क्या होगा, हमारी लाइफ में बैलेंस आ जाएगी. तो इसलिए स्टोमी हमें ये बात सिखा रहा है कि बैलेंस कितनी सुंदर चीज है.
बहुत अच्छी बात है दीदी, बात कही कि तूफान भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है. जैसे आप ये बात कह रहे थे, मैं विंडो के बाहर देख रहा था, बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पर माउंट आबू में, तो मैं ये भी देख रहा था कि फिजिकली भी ये चीजें बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाती हैं अगर हम एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नजरिए से देखें कि इसमें सिर्फ पूरा दिख रहा है, जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही नहीं देखना है, उसके ज्यादा भी चीजें देखनी है.
कहा तो जाता है ना कि there's two sides of a coin, और दोनों की वैल्यू सेम है, आप हेड्स के तरफ लो या टेल्स के तरफ लो, वैल्यू तो वही है. तो आपको स्टॉर्म हो या आपको साइलेंस हो, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम ही है, हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाता है लाइफ में.
परमिंदर कौर ये कमेंट करते हैं फेसबुक से हमारे साथ जुड़े, वो कहते हैं कि दीदी मैं जब कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मुझे अपना आंसर पहले ही मिल जाता है, वो कॉन्वर्सेशन को सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं. थैंक यू परमिंदर. विनोद कुमार शुक्ला कहते हैं, फीडबैक देते हैं, वेरी नाइस एडवाइस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, थैंक यू दीदी. ओम शांति कहते हैं, थैंक यू विनोद जी फेसबुक से हमारे साथ जुड़ने के लिए. रूबी शर्मा कहते हैं, दीदी बहुत बार मेरे फैमिली के लोग जो जा चुके हैं या मेरे लाइफ से जो लोग दूर हो गए हैं उनको मिलने का बहुत मन करता है, जो मैं चाहकर भी नहीं मिल सकती, बस इस ताप में रह जाती हूँ कि क्या करूं, इसका क्या किया जाए, वो पूछते हैं. और बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है, लॉकडाउन के चलते लोग अपने फैमिली मेंबर्स से दूर रहे हैं, कुछ लोग कहीं और चले गए हैं, कुछ लोग पास भी हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, और ऐसे सिचुएशन में थोड़ा महसूस हो रहा है कि हम उनको मिस कर रहे हैं और चाह कर भी हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कुछ लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है. तो ऐसे सिचुएशंस में क्या किया जाए?
वो तो नेचुरली अब ह्यूमन बीइंग्स है तो ये फील तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ह्यूमन और बीइंग हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ह्यूमन फिजिकल है और बीइंग मेटाफिजिकल है, स्पिरिचुअल है. तो कई बार क्या होता है कि भले फिजिकली हम एक दूसरे को देखते हैं या हम एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन दिल से और मन से हम नजदीक नहीं होते हैं, खाली नाम मात्र फिजिकली हम नजदीक होते हैं. तो क्या होता है कि इतना वो क्वालिटी मिलन नहीं है, मैं ऐसे मानती हूं, लेकिन थोड़ा मैं फिजिकल से बियॉन्ड जाऊं और मैं मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जाऊं, जिसको हम कहते हैं मन, मन की दुनिया, मन बुद्धि की दुनिया और स्पिरिचुअल दुनिया. तो जब मैं उससे कनेक्ट हो जाऊंगी ना, तो क्या होगा कि आपको ऐसे ही फील होगा कि वो लेवल पर आपको जिसको भी मिलना है ना, आप मिल सकेंगे. मेरा तो ये एक्सपीरियंस है. मेरे फिजिकल फादर, बायोलॉजिकल फादर ने 5 साल पहले शरीर छोड़ा था और मैं आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया है कि वो यहां नहीं है. मुझे ऐसे ही फील होता है, वो मुझे गाइड भी करता है, मुझे अप्रिशिएट भी करता है, मुझे स्पिरिचुअली सपोर्ट भी करता है, क्योंकि वो बहुत ब्रह्मा कुमारी में स्ट्रांग थे. तो क्या है कि हम दूसरे डायमेंशन पे, मैं ये थियोरेटिकली आपको नहीं बता रही हूं, प्रैक्टिकली बता रही, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कभी भी मुझे ये फील नहीं होता कि मेरे फादर ने वो उसका देहांत गया है या ये शरीर छोड़कर के चले गए हैं, वो दूसरे डायमेंशन पे वो मेरे साथ ही है, ऐसा मुझे फील होता है. तो एक है फिजिकल कंपेनियनशिप और दूसरी है स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप. तो अभी का जो ये सिचुएशन आया है ना, उसमें आप आपके रिश्तेदार को नहीं मिल सकते हो, वो घड़ी घड़ी सोचो नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली आप उनको मिल रहे हो ऐसा एक्सपीरियंस करो, और आप देखना वो थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा दरवाजा खोल देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा मिलने के लिए, हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, घड़ी घड़ी वो सोच करके आप सिचुएशन को ब्लॉक कर रहे हो, और वो ब्लॉक होगा ना तो डोर खोलना होता है ना, फिर भी नहीं खुलेगा, चाबी नहीं गुम होगी अंदर। तो इसलिए प्लीज आप आपके मन से वो बात निकाल दो कि आप आपके रिश्तेदारों को मिल नहीं सकते हो, इधर ये संसार छोड़ करके गए हैं, इधर वो दूर है कोई और दूसरे स्थिति में, टाउन में है, ये लॉकडाउन के कारण आप नहीं मिल सकते हो, ऐसा फील ही नहीं करो। हम बहुत पावरफुल इंडिविजुअल्स है, तो आपकी पावर को आप यूज करो, थॉट पावर को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ
जी, ये रिस्ट्रिक्शंस जो हम अपने आप में डाल देते हैं कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, बहुत बार हमें अपने ओपननेस को भी देखना है, कि हमारी फुल कैपेसिटी को भी देखना है।
उसमें मुझे एक बात और ऐड करनी है कि आप उनके साथ मेंटली कैसे कनेक्ट हो, तो जो पास्ट में आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है ना, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी यू नो इंसिडेंट्स, वो याद करो, इतना तो याद कर सकेंगे ना, चाइल्डहुड का याद करो, आप जब मिले थे तब क्या करते थे वो याद करो, और फिर आप देखना आपको ऐसे ही लगेगा कि आप मिले हैं उनको। मैं तो चलो मेडिटेटर हूं, इसलिए मैं दूसरे लेवल पर भी मैं वो फील कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक लेई पर्सन के लिए ये बता रही हूँ। और ये नहीं सोचना कि सारी जिंदगी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, नहीं नहीं, ये दरवाजा खुल जाएगा बहुत जल्दी।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी जो आपने कही है, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट चीज है,
नहीं,
अगर हम होपफुल रहते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, और हमेशा होपफुल रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त फीडबैक्स बहुत अच्छे अच्छे लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल चीजें जो है देखने की वो बहुत आसानी से करने जैसा लग रहा है अभी। शायद ये जो पेशकश हम कर रहे हैं कि हमारे जो मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन है वो हर दिन आपके साथ मिलते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, उनको बहुत ही सिंपल स्पिरिचुअल तरीके से, स्पिरिचुअल टूल्स और प्रैक्टिसेस से लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और उसे आसानी से इन्वाइट किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे मैं एक और सवाल ले लेना चाहता हूं, हालांकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट और है सवाल लेने के लिए। चंद्रकांत जी सवाल पूछते हैं फेसबुक से, वो कहते हैं कि एक ऐसा टाइम हमें अभी मिल रहा है जहां पर हम ज्यादातर लोग कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कोई किसी की मदद करना चाहते हैं, तो एक रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण आप रीच आउट नहीं कर पाते या हेल्प नहीं कर पाते। ऐसे टाइम पे हम लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, पिछले कई दिनों में हमने संकल्प शक्ति के बारे में सुना, हमारे एक मास्टर ने ये चीज बताई थी कि संकल्प शक्ति कैसे बनता है, उसके बारे में भी बातचीत की थी। तो ये संकल्प शक्ति और मेडिटेशन से क्या हम कुछ सेवा कर सकते हैं, क्या इससे हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं, ये सवाल पूछते हैं चंद्रकांत जी।
हमने यहाँ नैरोबी में हम 10 बहने हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, और हम लोग लॉकडाउन में हैं, और हम लोगों ने 86 डेज में अलग अलग रूप से मेडिटेशन किया, बहुत अलग अलग रूप से किया। उसमें एक मैं आपको बताऊं कि हमारे नजदीक के स्टूडेंट्स की फैमिलीज है, तो छोटी छोटी कुमारिया है, कोई कैने में पढ़ने का, तो जल्दी जल्दी नेक्स्ट फ्लाइट लेकर के पहुंच गई केनिया में, लेकिन केनिया में पहुंचने के बाद वो घर नहीं जा सकी, क्वारंटीन में लॉकअप हो गए, तो 14 डेज क्वारंटीन, फिर उनकी होटल में एक को कोविड हो गया, तो इसलिए और 14 डेज को। तो हमने जब सुना ना है कि ये बेचारे कोई रो रहा है, कोई इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया है, घर जाना है, होम सिक हो गया है, एक रूम में उनको सफोकेशन होता है, तो ये बातें तो आप समझ सकते हो। तो हम बहनों ने भी 10 है ना, तो 5 बहनों ने पहले और 5 बहनों ने बाद में, कि मतलब अपने आपको एक ही रूम में एक व्यक्ति ने 3 दिन लॉक किया, थोड़ा खाना ले गए, थोड़ा थोड़ा पानी पीने का ले गई रूम में, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक केटल ले गई और पढ़ना लिखना, और हमने 3 दिन अपने आप को रूम में लॉक कर दिया, एक ही रूम में जो बेडरूम ही है, लेकिन वहां ही हमने क्लासरूम बना दिया, वहीं हमने छोटा सा किचन बना दिया, और 3 दिन का जो भी खाना है वो ले गए, फ्रूट्स ले गए, और हमने तपस्या की। तो अलग अलग टाइप की मेडिटेशन हमने 86 डेज में किया। कल रात का हमारा लास्ट था और उसमें इतना हमको फायदा हुआ है, लोग भी हमको बताते हैं कि कितना फायदा हुआ, लेकिन अपने आप को पहले बहुत फायदा हुआ, फिर हम दुनिया को डेफिनेटली दे सकेंगे। और इतना अच्छा लगा उसमें, वो जो लॉकडाउन हमने कर दिया ना अपने आप को क्वारंटीन में, ऐसा तो हमने कभी लाइफ में नहीं किया था। तो मैंने 3 चीज रियलाइज की उसमें, 3 चीजें रियलाइज की कि हम ह्यूमन बीइंग्स को बहुत 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 सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरा बहुत खाने की भी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी हम खाते हैं, टाइम हुआ खाना है, भूख लगी है नहीं लगी है खाना है, और तीसरा अननेसेसरी हम बोलते हैं, अननेसेसरी, और चौथा इतना हमको सोने की भी जरूरत नहीं है। ये 3-4 चीजें हमने रियलाइज की, नींद भी बहुत कम, खाना भी बहुत कम, बोलना भी बहुत कम और सोचना भी बहुत कम। तो ये जो हमने सब एनर्जी बचाई ना, सब एनर्जी, ये ट्रेजर्स है, खाना भी एक ट्रेजर है। जब हम अननेसेसरी खाते हैं ना, तो दुनिया का हरेक का राइट है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा खा लिया ना, जिसे दूसरे का हमने छीन लिया। हरेक के लिए कुदरत ने समान दिया है, तो इतना अच्छी तरह से हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हम घर घर जाके डोनेट करने जावे या खिलाने जावे, वो तो करने वाले कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मेडिटेशन से कैसे कर सकती हूँ। तो सोचना भी कम है, बोलना भी कम है, सोना भी कम है और खाना भी कम है, और फिर आप देखना जितना भी आप करेंगे ना क्वालिटी होगा, सोना भी क्वालिटी होगा, निंद्रा भी क्वालिटी होगी, खाना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपने अच्छी तरह से कम खाया लेकिन वैल्यूबल, उसकी वैल्यू को समझा। तो मेडिटेशन एक खाली बैठ करके कोने में बैठ करके करने का मेडिटेशन नहीं है। मैं राजयोगी हूं, मैं कर्म योगी हूं। तो राजयोगी कर्म योगी, तो राजयोग मतलब हरेक चीजों और इंद्रियों के ऊपर मेरी राजाई है, और कर्म योगी मतलब मैं कर्म करते भी बुद्धि का योग उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड रख सकता हूं, और फिर मैं मेडिटेशन तो करता ही हूं समय निकाल करके। तो तरह तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन हम दुनिया को दे सकते हैं, वो हमने देखा।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, आप ब्रह्मा कुमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली के लिए, जहां पर आप पर्यावरण के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, और आपने ये जो कहा कि हम बहुत अननेसेसरी खाते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने भी उस चीज को पॉइंट आउट किया कि अगर हम कम कंज्यूम करते हैं, जितना जरूरत है उतना ही करते हैं, तो भी मतलब हम विश्व में किसी और के हिस्से का खाना नहीं खा रहे हैं, तो फूड वेस्ट नहीं करना और जितना नेसेसरी है उतना ही देना भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। और आपने इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया कि हमारे थॉट्स भी ज्यादा अननेसेसरी, सोचने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। और मैं यही सोचता हूँ, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं, हफ्ते में एक दिन कुछ घंटे के लिए मौन का प्रैक्टिस करते हैं, ये भी बहुत सारे स्पिरिचुअल टूल्स हैं जो लोग यूज करते हैं। अब वक्त हो रहा है अलविदा कहने का, क्योंकि लगभग हम 7 बजने वाले हैं भारत में और 1 घंटा हमने बातचीत की है। बहुत सारे दोस्त हमारे फीडबैक्स दे रहे हैं। लीजा सचदेव कहते हैं, थिंक लेस, टॉक लेस, ईट लेस, स्लीप लेस, जितना हम कम करेंगे उतना हम ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। सैंडी मैसेज भेजते हैं फेसबुक से, कहते हैं फीलिंग सुपर चार्ज्ड। थैंक यू सैंडी, हमारा यही कोशिश होता है कि आप एनर्जाइज फील करें, कुछ अच्छा करने के लिए आपको बूस्टर्स मिल सके। नीमा सांडु टमंग भी कहते हैं, इट्स ट्रू दीदी जी, थैंक यू वेरी मच। चंद्रकांत जी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू दीदी, वी डेफिनेटली क्रिएट क्वालिटी थॉट्स, प्रियंका शेट्टी कहते हैं न्यू पर्सपेक्टिव दीदी वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, आपको भी थैंक यू प्रियंका आपके फीडबैक्स के लिए। विद्या निवालकर कहते हैं रियली वेरी पावरफुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसा कहते हैं, ये भी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। मीना सक्सेना थैंक यू कहते हैं, वेरी नाइस एडवाइस कहते हैं, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। श्वेता सुमन कहते हैं वेरी फ्रूटफुल थॉट्स, फेसबुक से ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आपका भी। संदीप उपल थैंक यू फॉर दीज टिप्स कहते हैं, थैंक यू संदीप फॉर ज्वाइनिंग अस इन फेसबुक। अब मैं समझता हूँ कि थैंक यू के मैसेजेस भी अगर मैं पढ़ू तो काफी एक घंटा चाहिए होगा, बट हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपके फीडबैक्स और आपके थैंक यू के मैसेजेस ये सब कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। बहुत ही थोड़े से टाइम में हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जाएं। आप सभी ने आपके दिल के दरवाजे खोले, आपके दिल के ख्यालों को हमारे साथ शेयर किया, प्रश्नों को बेझिझक हमारे साथ पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और आप सभी दोस्तों की तरफ से, ऑल फ्रेंड्स हु हैव आस्क्ड क्वेश्चंस टुडे, उन सब की तरफ से मैं प्रतिभा दीदी का धन्यवाद करता हूँ जो खास अफ्रीका से कीनिया से हमारे साथ जुड़े और उनके दिल के बातें हमारे साथ शेयर की, उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को शेयर किया, हमारे लिए गाइडेंस ऑफर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रैक्टिकली मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे। जो लोग मेडिटेशन ज्यादा टाइम के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हर दिन शाम को हमने एक विशेष पेशकश शुरू की है। फेसबुक पेज पे ब्रह्मा कुमारीज के और यूट्यूब के ब्रह्मा कुमारीज चैनल पर आप शाम को 5:30 बजे इसी लिंक पर जहां पर आप देख रहे हैं, हर दिन शाम को 5:30 बजे इंडिया टाइम के अनुसार 15 मिनट के लिए ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन सीख सकते हैं। इंग्लिश में यह हर दिन प्रोग्राम होता है। अगर आपने एक दिन सीख भी लिया है तो हर दिन हमारे साथ मिलकर ये गाइडेड मेडिटेशन करें, और कलेक्टिवली जब हम चीजें करते हैं तो कलेक्टिव एफर्ट का एक बड़ा दमदार असर होता है, उससे उसका असर दूसरे लोग भी महसूस कर पाते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगले 4-5 मिनट के लिए प्रतिभा देवी, क्योंकि हमारे साथ हैं, वो हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन हैं, तो वो हमें मेडिटेशन कराएंगे भी, उनके साथ हमें मेडिटेशन करने का मौका भी मिलेगा। तो दीदी ओवर टू यू।
ओम शांति। अभी आप सब जहां भी बैठे हो आराम से बैठ जाओ और थोड़े अलर्ट भी रहना, और धीरे धीरे आपके आसपास का जो भी आवाज है वो अभी फेड हो रहा है और बस वातावरण में शांति ही शांति है, और मैं मन बुद्धि से अंदर की तरफ जा रही हूं। आपके अंदर में एक ऐसी जगह ढूंढो जहां बस साइलेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो जगह पे आप सेट हो जाओ और साइलेंस को सुनो। फील करो वो जगह बहुत ही शक्तिशाली है जो मेरे अंदर ही है, बहुत शीतल है और प्रकाशमय है। अभी धीरे धीरे मन बुद्धि के साथ हम ऊपर की तरफ जाते हैं और मस्तिष्क में, जहां मुझ आत्मा का निवास स्थान है, भ्रुकुटी के बीच में, दो आंखों के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड, वहां पर विराजमान हो जाओ। अपने आप को ये देह नहीं लेकिन एक चैतन्य आत्मा, एक आध्यात्मिक शक्ति महसूस करो। मैं आत्मा ये 5 तत्व के देह द्वारा कर्म करती हूं, सुनती हूं, बोलती हूं, बस यही कॉन्शियसनेस में एक घड़ी के लिए टिक जाओ। आपके ही मन से इतने सुंदर वाइब्रेशंस हर जगह फैल रहे हैं, आपके अंदर तो फैलते ही है लेकिन आपके आसपास भी फैलते हैं, और विश्व भर में भी वो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। तो मैं एक आत्मा शांत स्वरूप शक्ति रूप पवित्र स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रकाशमय आत्मा हूं। ये वाइब्रेशंस मैं सब जगह शेयर कर रही हूं, और अभी और ऊपर की तरफ चांद सूर्य आकाश से भी परे, सूक्ष्म दुनिया से भी परे, ब्रह्मांड निर्वाण धाम शांति धाम एक लाइट की दुनिया है जहां हम सब आत्माओं का निवास स्थान है। परमपिता परमात्मा भी वहां ही निवास करते हैं। तो मैं विजुलाइज कर रही हूं कि मैं आत्मा उनसे कनेक्ट हो गई और अपने आप को मैं रिचार्ज कर रही हूं। बस अभी मैं भर गई, प्रेम सुख शांति आनंद पाई, अभी वापस ये शरीर द्वारा मैं ये संसार के साथ शेयर कर रही हूं। संसार बहुत सुंदर जगह बन गया है जहां एकता प्रेम सुख शांति सब अनुभव हो रहा है।